मेरी अम्मी परसों पहुंच जाएंगी, हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है।
तुम्हें शर्म नहीं आती लोगों की बेटियों के लिए ड्रग्स खरीदते हो?
अम्मी पैसे की बात ही नहीं, हम एक दूसरे को चाहते हैं।
ऐसी मोहब्बत के जो गली कूचों में पैदा होती है वही दफन भी हो जाती है।
बाबा को फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हमको अरेस्ट कर लिया गया है अंकल, हम थाने में हैं, जल्दी आ जाइए आप।
उसकी जेब से ड्रग्स मिले हैं।
ड्रग्स?
इसी फोटो वाले लड़के की जेब से ड्रग्स मिले हैं। अलबत्ता उस वक्त आपकी लड़की भी साथ में थी।
एक लेबोरेटरी चाहिए मुझे।
इतनी रात को?
सर, आपकी बेटी गाड़ी में है, आप जाएंगे नहीं?
आज रात को भूल जाओ। अपने बास के सामने अगर कुछ कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। कहो अच्छा?
बताना कितना निकालूं।
बस करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पपी जान।
देख लेंगे।
बैठिए, मैं जाता हूँ। कौन?
कौन था?
वही मोहम्मद जवाद।
उनके बाप हो तुम? मोहम्मद जवाद साहब।
मोहम्मद जवाद साहब जी। अच्छा पपी,
क्या है?
मोहम्मद जवाद साहब से कह दिए मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उसी बारे में।
किस बारे में?
वो खुद जानते हैं।
नहीं नहीं, बैठिए जवाद साहब। अर्दलान और रहा वापस नहीं आए? रहा मिल गई क्या? तो क्या हुआ है?
सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। जी जी मैं ही हूँ जी, आपके मरीज आ चुके हैं। मेरे दोस्त तमजीद साहब और उनकी बेटी अभी नहीं पहुँचे, नहीं मालूम कब पहुंचेंगे। अच्छा आप वहां कह दीजिए, उनका इंतज़ार कर लें, सब्र और हौसले के साथ वो पहुंच जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
कौन चल चुका है? क्या हुआ है, कुछ बताओगे?
नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो।
नहीं,
मैंने कहा नीचे उतरो।
मुझे नहीं आना।
छोड़ो।
अर्दलान क्या हुआ है? खुदा की
नीचे उतरो।
छोड़ो।
छोड़ो इस बच्ची को। छोड़ो। मैं सुधार दूंगा इसे।
क्या हुआ है अर्दलान?
छोड़ो इसे।
पापा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए।
छोड़ दो।
पापा प्लीज।
ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं है बेटा, जिंदगी इसी का नाम है। कुछ बोगे तभी तो फसल हासिल होगी। अपने बच्चे को टाइम दो तभी कुछ होगा। गलत इब्तिदा का अंजाम भी गलत होता है। परेशान ना हो बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम परेशान ना हो।
सिर्फ ये लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? मैं कैसा जानवर हूं कि ऐसे जानवर मेरे हिस्से में आए? मौत नेमत है, लेकिन इसके लिए जो क्या चाहिए?
खुदा के वास्ते छोड़
दो। बाहर जाओ। ये उस बदबख्त औरत का नतीजा है। उसकी जहालत उसकी अम्मी का कारनामा है। बाहर जाओ, बाहर निकलो। सब मेरे सामने सेटो।
सर खुदा के वास्ते।
क्या चाहिए तुम्हें?
कुछ नहीं सर, ये बैग उनका अंदर पड़ा था।
मेरे सामने से हटो, दूर हो जाओ। जाओ। नहीं, अब आज के बाद इस घर का कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। सारे दरवाजे खुले रहेंगे। पानी पीने पर भी ध्यान दूंगा। सांस भी लो तो मेरी इजाजत से। सुधार दूंगा तुम्हें। उस औरत से भी गया गुजरा हूं, अगर तुम्हें सुधार ना सकूं। ड्रग्स, ड्रग्स, नशा, अजनबी लड़के की फोटो। थोड़ा तवज्जो से रहा करो अर्दलान तमजीद, ध्यान दिया करो अर्दलान। जिंदगी भर बर्बाद बच्चों को गली कूचों में देखा, बस अफसोस करता रहा। अब मेरी बेटी उनसे चार हाथ आगे है। मैं छुड़वा दूंगा। अब इसके बाद यहां कैद खाना है, हारून रशीद का कैद खाना। या तो ड्रग्स छुड़वा दूंगा, या तो इसी घर के बागीचे में तुम्हें दफना दूंगा। कुत्तों की तरह पेश आऊंगा।
क्लिनिक से आए हैं राह को अपने साथ ले जाने के लिए।
किसने तुमसे क्लिनिक का कहा?
अकल, अकल कहती है कि इल्मी तरीके से इसे छुड़वाया जा सकता है। उठो बेटी।
मैं अपनी बेटी किसी क्लिनिक में नहीं रखवाऊंगा, ताकि सब कहें ये देखो अर्दलान तमजीद की बेटी है जो नशई हो गई। नहीं चाहिए, वापस भेज दो।
सब नहीं कहेंगे, सिर्फ क्लिनिक को पता होगा।
कोई जरूरत नहीं है बाहर। तुमसे क्या
तुम
मतलब?
तुम बुलडोजर की तरह हो गए हो, जो कुछ सामने आए बर्बाद करके आगे बढ़ते हो।
तुम क्या चाहती हो? ये कोई होटल है जो घर में घुसाई हो? जाओ जाओ, बाहर जाओ, जाओ।
तुम क्यों सबसे लड़ रहे हो? उसे क्लिनिक ले जाने दो, सब ठीक
मुझे
हो जाएगा।
किसी की मदद की जरूरत नहीं।
तुम इधर आओ, उसको क्लिनिक ले जाने दो इलाज के लिए। तुम उसे क्यों रोकना चाहते हो बेवकूफ आदमी?
मत रो बेटा, मेरी जान मत रो।
जाओ बाद में आना अरसलान। मैंने कहा जाओ बाद में आना।
गुलबानू ने मुझसे कहा कि अभी आऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। अब आप ठीक हो जाएंगे।
يجيب المسترى زادا ويكشف السوء أما يجيب المسترى زادا ويكشف السوء खा लीजिए ताकि कल रोजे में ज्यादा परेशानी ना हो आपको।
बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आपको याद रह गया?
जी मोहम्मद जवाद साहब, मेरे मरहूम शौहर भी आपकी तरह मुस्तहबी रोजा रखते थे। रोजा मतलब सख्त गर्मी में रोजा, भड़कती आग के सामने रोजा।
जी जी, रोटी बनाते थे, तंदूर के सामने खड़े होकर रोजा रखना हर किसी के बस की बात।
खुदा आपकी मगफिरत फरमाए मिर्जा साहब। हाय, कैसे बैठा है परेशानी के आलम में। ऐसे उसकी शान और शौकत पर मत जाओ, उसकी तन्हाई दूर करो मोहम्मद जवाद।
न जाने का दिल है न रुकने का। ये खाऊंगा तो प्यास लगेगी गुलबानू। शुक्रिया तुम्हारा। जब राना थी तो कहते थे एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यहाँ आ गए, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं तलाक हुए, अभी तक यहीं हो तुम। लेकिन इंशाल्लाह जब राह ठीक होकर आ जाएगी तो साइड वाली बिल्डिंग में चले जाना, बच्चों के साथ रहना। ये कैसी जिंदगी बना रखी तुमने, ये क्या हालत बना रखी तुमने, ना कोई एनर्जी ना कोई प्यार। राह कितने साल की है? 19 साल की। मैं बाहर आंगन में बैठा ये सोच रहा था कि जब हम 19 साल के थे तो क्या करते थे। मुझे तो 3 साल हो चुके थे आज़र से शादी किए हुए। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अर्दलान, और तुमने मरियम से शादी से इनकार कर दिया था।
रहा बस 18 साल की है। 19 साल इसलिए कह रहे हो ताकि 19 साल पुरानी बात याद दिलाओ। मैं तुम्हारा कितना मकरूज हूँ।
मेरे और अपनी अम्मी के अलावा एक और शख्स है, उसके भी मकरूज हो। मरियम की बात कर रहा हूँ।
मालूम है, इसलिए तुमने 19 साल पुरानी बात याद दिलाई है। तुम जानते हो मोहम्मद जवाद, मैं जल्द ही इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम मुझे परेशान करने लगे हो। तुम मुझे बेवक्त आना देना चाहते हो। तुम चाहते हो
रहा ठीक हो कि नहीं।
उसको होना ही पड़ेगा। मैं ऐसी लड़की को जमीन में गाड़ दूंगा।
इंसान अगर सुधरा हुआ हो तो बच्ची को सुधारता है, दफ नहीं करता। इंसान अगर इंसान हो तो सब्र तहमुल से काम लेगा, बच्चे की मदद करेगा। इंसान का बच्चा अगर ऐसा हो जाए तो उसके साथ उठता बैठता है, उसके साथ बात करता है, जीता है मरता है, सुकून से ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन अपनी मजम्मत करता है कि आखिर मैंने क्या किया जो मेरा बच्चा ऐसा।
अरे भाई, बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, कहो। अच्छा, मैं सुबह से शाम तक कारोबार में फंसा रहा। अगर वो औरत ना गई होती तो रहा भी मेरे हाथ से ना जाती।
मेरे भाई, तुम खुद जब कभी अरसलान को प्यार करना चाहते हो तो वो तुमसे दूर भाग जाता है, रहा दूर भाग जाती है, चूंकि तुम्हें पहचानते हैं कि गुस्से वाले हो।
मैंने उन सब का क्या बिगाड़ा है भाई जो वो मुझसे भागने लगे हैं, चूंकि वो सौड़ा है जो उनकी माँ है।
अच्छा, तो ये सारी बात हो कि सब चीजों का कसूर अपनी बीवी पर डाल दो।
कसूरवार की तलाश में
नहीं, अपने आप को साबित करो।
किसके लिए अपने को साबित करूं?
अपने आप के लिए। अपने लिए क्या कर सकते हो? अब के जब यह हालत हो गई है तो क्या कर सकते हो तुम उस वक्त मेरे दोस्त थे कि जब हमारा बचपन था, गुर्बत थी, यतीमी थी। लेकिन अब अभी मैं तुम्हारा दोस्त हूं कि जब तुम अपने आप से भी दूर हो, बच्चों से दूर हो तुम। मुझ दोस्त से एक राय हल सुन लो। तुम्हारी बेटी के कमरे में एक लड़के की फोटो मिली है तो सोचो क्यों ऐसा हुआ कि वो गली कूचों में एक लड़के के पीछे भागी। अगर तुम्हारी बेटी ड्रग्स लेती है तो सोचो क्या कमी रह गई कि वो ड्रग्स की तरफ गई। मेरी बात गौर से सुनो। अगर अपने बच्चे की जबान समझ सके तो ठीक है, वरना तुम्हारी बेटी जिंदगी भर इसी तरह रहेगी और तुम एक नशे वाली लड़की के भाग। सुनो जनाब, बड़े कारखाने के मालिक, अपनी बेटी की जबान को समझो। अपनी बेटी की देखभाल करो। अगर उसकी जबान समझ सको तो ये और ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अर्दनान, मुझे वाकई नहीं मालूम था कि राह 18 साल की है।
मोहम्मद जवाब साहब, ये मेरी पुप्पी ने दिया है, कह रही थी अजान होने से पहले खा लीजिए ताकि कल परेशानी ना हो।
खुदा उन्हें सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया।
सर, मेरी ट्रेनिंग भी अब ख़त्म हो गई है।
अच्छा, मुबारक हो, माशाल्लाह।
लेकिन मेहरबानी करके वो मसला भी मेरा हल करा दीजिए।
कौन सा मसला?
वही काम, शादी और...
अच्छा अच्छा, पहले काम ढूंढने दो, बाद में शादी के बारे में सोचेंगे।
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों का एक साथ इंतज़ाम हो जाए?
इंतज़ाम हो जाए?
अरे यही, एक साथ हो जाए।
जी नहीं, तरतीब से, पहले काम फिर शादी। और ये अब आज़र मैडम की हॉर्न की आवाज़ है, मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज़।
ठीक है, मैं हर रोज़ आपको याद दिलाता रहूँगा, बस नाम नहीं लूँगा, वही मसला बोलूँगा।
ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आज़र।
पहले इस थर्मोस से जो वहाँ बैठ के नीचे रखा है कप चाय निकाले हैं, और घर से जो मैं एक लुकमा कैटलेट लेके आई हूँ वो भी खा लें, फिर बाद में बात करेंगे।
ओ, अभी तो सहरी को काफ़ी टाइम है, उस वक्त तो फिर से भूख लग जाएगी।
पेटू, सहरी के लिए अलग कर रखा है मैंने। अच्छा,
बहुत बहुत शुक्रिया।
नर्सिंग होम से फोन आया था, कह रहे थे खुर्शीद ने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, रात का खाना भी नहीं खाया है, एक कोने में पड़ी बैठी है, तुम्हें याद कर रही है।
मुझे? लेकिन मुझे क्यों?
वही पुराने सवालात कि मेरी अम्मी कौन है, अब्बू कौन है, कहाँ रह रहे हैं।
तारे का एक टुकड़ा एक दिन आसमान से छूटकर बहुत दूर, मतलब चांद के पास चलकर पहुंच जाता है।
بہت سے آسمانوں سے گزرتا ہے، مطلب پہلے آسمان سے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے آسمان سے، کہ اچانک آہستہ آہستہ وہ بھول جاتا ہے کہ کئی آسمانوں پار کر چکا ہے۔ وہ چاند کے پاس پہنچا، زمین کا ایک راؤنڈ لگاتا ہے، پھر چاند کے پاس پہنچتا ہے۔ چاند سے کہا، شہر کو دیکھو۔ کہا، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔ پھر وہ تارا گیا، جاتا گیا، چلتا گیا، اور وہ بھول گیا کتنی دور چلا گیا ہے۔ دو گھنٹے، تین گھنٹے، یا کتنے سال ہو گئے۔ پھر سورج کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تارے کو جب پتہ چلا کہ سورج کیوں تنہائی کا احساس کر رہا ہے، تو سمجھ گیا کہ ارے، اسے پلٹ کر واپس جانا چاہیے جہاں سے آیا ہے۔ تارے نے سورج سے کہا، دیکھو کیسے زمین تمہارے ارد گرد گھومتی ہے، تم سے دور ہوتی ہے، تم سے قریب ہوتی ہے۔ چاند کو دیکھو، چاند کو دیکھو کہ کیسے یہ کام کرتا ہے، وہ سب تم سے دور ہو چکے ہیں اور پھر قریب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ تم سے انہیں پیار ہو، جیسے کہ وہ تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں۔ اس کے بعد سورج کو تنہائی کا احساس نہیں ہوا، مطلب یہ کہ تارا پلٹ کر چلا گیا، اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ماں باپ کی جگہ کو کیسے بھرنا چاہیے، ان کی جگہ کون لے گا، ان کی جگہ پر کون آئے گا۔ وہ خدا جس نے تارے پیدا کیے، جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کہاں سے آیا اور کس کو کہاں جانا ہے۔ ستارہ سورج سے کہتا ہے، ذرا دیکھو، دیکھو زمین کیسے گھوم رہی ہے اور تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہے، ماں باپ کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ ماں باپ دور ہوتے ہیں لیکن پھر قریب آ جاتے ہیں، جیسے چاند، ستارے اور جیسے زمین کا قصہ ہے، وہی سارا قصہ ہمارا ہے، ہم سب لوگوں کا ہے۔ مطلب یہ کہ ستارے کو اب یہ پتہ چل گیا کہ اس کا سفر کیا ہے، اسے کہاں جانا ہے۔ ہماری بھی یہی مثال ہے، بچے بھی ستاروں کی طرح ہیں، ماں باپ بھی چاند اور سورج کی طرح ہیں۔ خدا کرے حاجی ثانی اتنے شور شرابے سے بیدار نہ ہو گئے ہوں۔
انشاءاللہ میری مدد کریں گے۔
ہاں سر،
شکریہ۔ اس گھر کی بہت یاد آئے گی محمد جواد۔
خدا کا شکر ہے، بابرکت گھر تھا یہ۔
ہاں، لیکن جب سوچتی ہوں کہ 200-300 بچوں کا ہاسٹل بننے والا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔
چلو الحمدللہ۔
اچانک مجھے اپنے کالج کے دن یاد آ گئے، کتنے اچھے دن تھے۔
واقعی عجیب بات۔
کیا عجیب ہے؟
یہ کہ پڑھائی میں کمزور لوگوں کو بھی کالج کا زمانہ یاد ہے۔
میں پورے کالجز میں 10th نمبر پہ آئی تھی، کمزور تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
مجھے پہچانا؟
جی، رانا صاحبہ، رہا کی والدہ، اردلان صاحب کی سابقہ بیوی،
اور ارسلان کی امی۔
آئیے۔
میرے لیے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ اردلان نے میرے بارے میں آپ سے کیا کہا ہے، لیکن میرے الگ ہونے کی وجہ مجھ پر باہر کا بھو سوار ہونا نہیں تھا، بلکہ میرے لیے مشکل بات یہ تھی کہ 18 سال کے بعد سمجھو گے جس مرد کے ساتھ میں رہتی ہوں وہ تمہارے حسن جمال کا شہدا نہیں ہے بلکہ اسے تمہارے باپ کے پیسوں سے پیار ہے۔ یہ سب اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے جوتوں کی آواز گھر میں داخل ہوتے ہی میں سن لیتی تھی اور فوراً شیشے کے سامنے جا کر اپنے کو سنوارتی تھی تاکہ اچھی لگوں، میرا شوہر مجھے چاہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ تمہاری بگڑی ہوئی زندگی سنوار سکے۔ لیکن میں گئی اور نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن خوش نہیں ہوں۔ وطن سے دور خوشی کیسی، وہاں تمام رنگ و بو کے ساتھ غریب ہوں، غریب الوطن، خاص طور سے جب اپنے بچوں سے دور ہوں۔ اردلان سے طلاق کے بعد خریدا ہے تاکہ ہمیشہ مجھے یاد رہے کہ ایک شادی شدہ خاتون کی طرح کبھی اپنے بچوں کو نہ بھولوں، صرف بچے، نہ کسی سے پیار کیا، نہ کسی سے دل لگایا، نہ شادی، صرف بچے۔ آپ کو پتا ہے ریحانہ مجھ سے کیا کہا ہے؟ وہ کہتی ہے اگر میں نہیں آئی تو وہ اسمگلروں کے پاس چلی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو انسان اسمگلروں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، اردلان بھی نہیں جانتے، نہیں جانتے کہ میری راہ اسمگلروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتی ہے۔ اس بار اردلان ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں میرے بابا کافی سال پہلے کھڑے تھے، وہ اپنی تمام زندگی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور روز یہی سوچتے ہوں کہ آج انٹرپول والے انہیں پکڑ لیں گے کل۔
کیوں اردلان کیا کر رہا ہے؟
اردلان کے کام سے مجھے کچھ نہیں، مجھے اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔
لیکن مجھے کام ہے۔
اگر کام ہے تو جا کر پوچھ لیجیے۔ میں سیدھی ایئرپورٹ سے یہاں آئی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اردلان سے اچھے تعلقات ہیں۔ میں نے ابھی تک ریحا کو فون نہیں کیا ہے، سیدھی یہاں آئی ہوں تاکہ میری اور میرے بچوں کی مدد کریں۔ آپ محمد جواد صاحب ہمیشہ مجھ سے نفرت کرتے تھے، لیکن اتنے شریف انسان تھے کہ کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، میری طرح میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا۔ آپ میری زندگی کے طریقے سے خوش نہیں تھے، مجھے بھی آپ کی زندگی کا طریقہ بالکل پسند نہیں ہے، لیکن منطقی انسان ہیں، کم سے کم اردلان سے زیادہ۔ تو پھر آپ اس سے بات کیجیے اور کہیے کہ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دے۔
راہ اس لڑکے سے ملتی ہے
تو میں کیا کروں؟
اس لڑکے کی جیب سے ڈرگز ملے ہیں۔
ہر کسی کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔
جب راہ کو ہم گھر لا رہے تھے تو اس لڑکے کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔
اچھا ہوا،
اردلان کو شک ہو گیا تھا کہ رہا بھی ڈرگز استعمال کرتی ہے یا نہیں۔
اس کو تو دنیا کی ہر چیز پہ شک ہے،
اسی لیے اس نے ڈانٹ کے چلا کے رہا کو کلینک پہنچایا کہ اس کا بھی ٹریسٹ ہو سکے، پتا چلا کہ وہ ڈرگز لیتی ہے۔ ڈاکٹر وہی ڈاکٹر جن کے ہاں اس وقت رہا ہے، اس نے بتایا کہ جس مرحلے میں رہا ہے وہ مرحلہ ایسا ہے کہ بہت سخت ہے، یہ مرحلہ ایسا ہے، اتنا سخت ہے کہ اس میں ڈرگس لینے والے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے جوڑ جوڑ الگ ہوتے جا رہے ہیں، اعضا ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہیں بتائیے؟
مجھے چھوڑ دو، مجھے جانا ہے فرزاد، فرزاد، فرزاد۔
آؤ چلو۔
امی مجھے معاف کر دیں۔
بہت بہت شکریہ بیٹا، چلو مرنے سے پہلے تھانے کا راستہ بھی دیکھ لیا۔ اپنی امی کو کہاں کہاں تک لے جاؤ گے؟ شاباش ہے تمہاری غیرت پر۔ صبح کے 4 بجے ہیں اور تمہاری ماں تھانے اور سڑکوں پر ہے، شاباش ہے تمہارے اوپر۔ اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس مجھے دو، میں نے کہا اس لڑکی کے گھر کا ایڈریس مجھے دو۔
امی اس سے ملی؟
ارے سامنے سے ہٹے، مجھے جانا ہے۔
اگر میری بات نہیں سنیں گے تو نہیں ہٹوں گی۔
क्या कह रही हैं आप? सामने सेठी है, मुझे काम है।
इतने से ड्रग्स की वजह से जो उसके पास था उसे 10 दिन के लिए जेल भेजा है और 5 लाख तुमान जुर्माना भी किया है।
कैसा ड्रग्स?
मैं जानती हूँ कि 5 लाख तुमान आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए
गलत एड्रेस पर
लेकिन जमा करके उसे निकाल
लूं। को ढूंढ रही है।
हिफाजत करूंगी, ठीक कर दूंगी उसे। अब ज्यादा ध्यान दूंगी उस पर, और आप भी अपनी बेटी का ज्यादा ख्याल रखेगा कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे।
अच्छा, उस जलील और लावारिस बच्चे की अम्मी आप हैं?
लावारिस होना बुरी बात नहीं है, बदतमीजी बुरी बात है।
देखिए मोहतरमा, मेरी बेटी एक क्लिनिक के कोने में पड़ी
है। मेरा बेटा जेल के कोने में।
जाइए मोहतरमा,
जाइए। अगर मेरे बच्चे में खराबी है तो आपकी बेटी में भी है।
तुम्हारा बेटा तो
रेहा के कॉलेज से फोन है, प्रिंसिपल का फोन है। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप?
मेरी बात गौर से सुनो, क्या कह रहा हूँ। कल वैसे कहकर आया था मैं वहाँ आकर कॉलेज में ताला लगवा दूंगा, और इस वक्त तुमसे कह रहा हूँ प्रिंसिपल, मैं वहीं आ रहा हूँ कॉलेज बंद करवाने के लिए। मेरी बच्ची एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आई, सड़क पर दरबदर फिरती रही। क्यों कॉलेज नहीं आने दिया? क्यों मुझे नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे फोन पर कुछ नहीं सुनना है। मैं वहीं आ रहा हूँ, अपना जवाब तैयार रखो। कहो। अच्छा, ये लो गुलबानो। और अब आप, मैं आपके बेटे के बाहर आने का इंतजार करूंगा, फिर उसे मैं देख लूंगा। देख लेने का मतलब तो जानती हैं आप।
मेरे बच्चे को उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। इस मुल्क में कानून भी है।
कानून? कानून मैं हूँ, चूंकि मेरी जेब में पैसे हैं। आप जाइए।
देख लेंगे।
मैडम,
मरियम, मरियम कौन है?
वो काम जो अर्दलान ने किया है, उससे मेरे बाबा की कमर टूट गई है।
अभी आप आ रहे हैं? 2 घंटे पहले इसकी अम्मी आई थी, इसको आराम की जरूरत है जनाब।
किसकी अम्मी आई थी? मैं उस औरत को उसके करीब से भी नहीं गुजरने दूंगा। मेरे बच्चों की तरफ मत आना।
कदम बे कदम तुम्हारे बच्चों के पीछे आऊंगी ताकि अपने बच्चों को ले सकूं।
कदम बे कदम
कदम बे कदम
तो फिर आओ
मानो।